यदामृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेद्गदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद व्हेन द रिस्पेक्टिव वॉरियर्स ऑफ बोथ कैंप्स namely the Kauravas and the Pandavas were killed on the battlefield of Kurukshetra and the dead warriors obtained their deserved destination and when the sons of Dhritarashtra fell down lamenting his spine broken being beaten by the club of Bhimasen the son of Dronacharya at that time the son of Dronacharya Ashwatthama beheaded the five sleeping sons of Draupadi and delivered them as a prize to his master foolishly thinking that he would be pleased Duryodhan, however, disapproved of the heinous act and he was not pleased in the least. Purport by Srila Prabhupada. Transcendental topics of the activities of Lord Krishna in the Srimad Bhagavatam begin from the end of the battle at Kurukshetra, where the Lord Himself spoke about Himself in the Bhagavad Gita. Therefore, both the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam are transcendental topics of Lord Krishna. The Gita is Krishna Katha, or topics of Krishna, because it is spoken by the Lord. And the Bhagavatam is also Krishna Katha, because it is spoken about the Lord. Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted everybody to be informed of Krishna Katha by his order. Lord Krishna Chaitanya is Krishna himself in the garb of a devotee of Krishna. And therefore, the version of both Lord Krishna and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are identical. Next sentence Prabhupada puts in italics for those born in India. Lord Chaitanya desired that all who are born in India seriously understand such Krishna Katha and then after full realization, preach the transcendental message to everyone in all parts of the world. That will bring about the desired peace and prosperity of the stricken world. Class Ramananda Prabhu, class Hindi or in English? English. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं I seek the blessings of Sri Guru Srila Prabhupada and our revered acharyas headed by the six Goswamis of Vrindavan Sri Rup Sanatana Bhatt Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath Such divine personalities as the six Goswamis, just by remembering them, all obstacles on the path of bhakti vanish and one can attain the desired goal. I also seek blessings of all of you devotees to be able to serve you in this way. Today, the verse we are reading is a reference to the Mahabharata, the battle of Kurukshetra. As we were discussing yesterday, there are many battles in history. There's World War I, World War II. Before that, Napoleon, fights of Napoleon and Hitler and French Revolution and the Mughal Wars, Abraham Lodi. And the only value of reading those literatures of these wars is that you can pass your examination and get a SSC certificate, right? To pass 10th standard, you have Okay. आज हम महाभारत के कुछ should I read the translation again? Translation? No, what I'm saying is, should I read the verse and the purport again in Hindi? ओके दैट इज बीइंग डन. मैं ये चर्चा कर रहा था कि हम महाभारत में रुचि क्यों लेते हैं, क्योंकि महाभारत जो है वो उसमें भगवान कृष्ण हैं. नहीं तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, आपने शायद पढ़ा होगा 1857 में ब्रिटिश सरकार के दैट म्यूटिनी टुक प्लेस, उनमें लड़ाई हुई थी. उससे पहले अब्राहम लोदी, और उससे पहले पता नहीं कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई हैं. उनका लाभ ये होता है कि एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं. ऐसे कई लोग बीए करते हैं, एमए करते हैं, उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री होता है, मिडीवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग मोगल रूल, इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. और क्योंकि आजकल डिग्री प्राप्त करना ज़रूरी है जॉब के लिए, तो लोग पढ़ते हैं. रियली किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. मतलब देखो, दो कुत्ते लड़े हैं तो फिर हमें क्या लेना देना. कहीं कोई बोला नहीं काला कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, नहीं वो ब्राउन वाला मेरा है कन्फर्म. काला कुत्ता करेक्ट है. एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं है, चाहे चाइना और भारत में लड़ाई हो या इसराइल और इराक में, इजिप्ट में लड़ाई हो. एक्चुअली लड़ाई हमेशा चलते रहते हैं, और इन लड़ाइयों में कोई तथ्य नहीं है. बेसिक चीज़ है कि हर व्यक्ति ईश्वर बनना चाहता है, हर व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है. अब आप अगर ऊपर की दृष्टि से देखें, मान लो आप एयरप्लेन के ऊपर उड़ रहे हैं, आपका स्वयं का एक चार्टेड फ्लाइट है, चार्टेड प्लेन है. अभी तक नहीं आया, नहीं होता तो मैं राधेश्याम प्रभु के लिए खोद रखते टीचिंग के लिए. समडे कृष्णा विल सेंड. तो एक चार्टर्ड आपका प्लेन है, और आप समझो अपनी इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं, पूरे धरती को देख रहे हैं. तो आप ऊपर से नदियाँ देखते हैं और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अधिकांश जो ज़मीन है वो इनहेबिटेड नहीं है. मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ अनइनहेबिटेड इवन टुडे इन द वर्ल्ड. और बीच में कुछ कुछ इलाके आते हैं पैचेस जैसे, जहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं और कीड़े मकोड़े की तरह कार चल रहे हैं, यू नो, और ट्रेन्स जा रहे हैं, लगता है कोई सांप चल रहा है ऊपर से. तक वास्तव में देखें तो क्या चीज़ किसकी है, क्योंकि कोई ऐसे बॉर्डर है नहीं नेचुरल कि यहाँ पे भारत है और अब पाकिस्तान शुरू होता है. ये तो हम ही ने बनाया है. जैसे राधेश्याम प्रभु, मैं और कुछ भक्त बांग्लादेश गए थे आज से डेढ़ दो साल पहले, जनवरी 2005 में. तो हम लोग बांग्लादेश गए तो हमको एक वीज़ा के इलाके से गुजरना पड़ा, और एक व्यक्ति ने हमारे सबके पासपोर्ट ले लिए. रिमेंबर प्रभु, ही टुक ऑल आवर पासपोर्ट्स. वीज़ा देने मतलब आगे जाने के लिए वो स्टैम्प कर रहा था पासपोर्ट्स, फिर बोला पैसे दो थोड़ा कमीशन. तो बड़ा भयंकर व्यक्ति था, दाढ़ी थी, और मेरे नवाब हुसैन शाह की याद आ रही थी. बांग्लादेश जा रहे हैं तो ऐसे ही लोग ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे. और फिर उसने पासपोर्ट दे दिया थोड़ा पैसा देने पे, लेकिन जस्ट क्रॉस किया तो बोर्ड आ गया, वेलकम टू बांग्लादेश, यू नो. अब मेरा BSNL का मोबाइल उधर भी काम कर रहा था, बिकॉज इट्स स्टिल द सेम. इट्स लाइक यहाँ से लेके वो जो अपने गेट, जो टेलीफोन जो सामने रखा है, उस जो बूथ बना है उसके पास. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, सेम एयर इज़ देयर, नहीं सेम लैंड इज़ देयर, सब सेम है सब कुछ. ये तो हमने ऐसे बना दिया कि अब यहाँ तक बांग्लादेश है, यहाँ तक भारत है, और फिर उसी पर लड़ाई होती है, उसी पर लड़ाई. इनफैक्ट चाइना भारत का युद्ध हुआ 1962 में, वो ऐसे एरिया पे लड़ाई हो रही है जो कि ज़्यादा यूज़ भी नहीं होने वाला है. माउंटेनियस एरियाज विच आर नॉट सो यूज़फुल फॉर एनी पर्पज. और कोई कोई इलाके यूज़फुल भी होते हैं कल्टीवेशन के लिए. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि ये सब के स्वामी कौन है, क्योंकि ये तो हमने बनाया है कि ऐसे ये यहाँ तक ये देश है, यहाँ तक ये देश है, ये नदी इसकी है, ये नदी, ये ज़मीन इसकी. लेकिन वास्तव में युद्ध का कोई कारण नहीं है, सिर्फ ईगो है, एक अहंकार है. और आप और दृष्टि से देखिए, मान लो आपकी उम्र 2000 साल है, आप 2000 साल से जब AD शुरू हुआ, जब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, तब से आप अभी तक जीवित हैं, तब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ज़मीन वहीं रह जाती है, बिल्डिंग्स वहीं रह जाते हैं, और लोग आते हैं, लड़ते हैं और मर के चले जाते हैं. जो जीत गया वो भी मर जाता है, जो हार गया वो भी मर जाता है. अल्टीमेटली इट्स ऑल इल्यूशन, इट्स ऑल इल्यूशन. इसलिए भक्त को युद्ध में इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन महाभारत में क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें पांडव हैं, इसमें कृष्ण है, कृष्ण संप्रश्न. परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, योर क्वेश्चंस आर ग्लोरियस बिकॉज दे आर रिलेटेड टू कृष्णा। ये सुंदर प्रश्न है क्योंकि ये कृष्ण के संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है, इसलिए जो क्रिया युद्ध भी है वो भी एक डिवाइन पास टाइम हो जाता है। महाभारत में जो अस्त्र यूज कर रहे हैं और भौतिक युद्ध में अस्त्र यूज कर रहे हैं, अगर सेम भी हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कृष्ण है सेंटर में, कृष्ण के डायरेक्शन में युद्ध हो रहा है, इसलिए वो युद्ध भी भक्ति की क्रिया है। जैसे भीष्मदेव के बारे में कहा गया है, भीष्मदेव जब तीरों की बौछार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर खून के बूंद पड़ रहे हैं, सम ड्रॉप्स आर अपियरिंग, अ प्रभुपाद कंपेयर्स देम टू फ्लावर्स, है ना, ये फ्लावर्स फर्स्ट कैंटो में बोलते हैं कि ये भी फ्लावर्स जैसे ऑफरिंग है भीष्मदेव का, वीर्य रस, एनी कोट्स विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, लवर्स बाइट, जैसे प्रेमी जो है कभी प्रेमी प्रेमिका में कभी शरीर को काट दिया तो एक दांत से, जैसे कृष्ण जो है भीष्म के तीरों को स्वीकार कर रहे हैं। तो हर चीज़ दिव्य है महाभारत में। अब देखेंगे शुरू से ही महाभारत में बहुत सारे लेसन्स हैं। हालांकि ये बात सही है कि ये कम बुद्धिमान लोगों के लिए बताया गया है, लेकिन फैक्ट है कलयुग में हम सब कम बुद्धिमान हैं, ज़्यादा बुद्धिमान है वो भी कम है, मतलब कम में ज़्यादा है, यानी अंधों में काना राजा है ना। तो एवरीबॉडी इज लेस इंटेलिजेंट एंड इफ यू आर लिटिल मोर देन यू फील बेटर। बट अभी मैं प्रभुपाद का अभी सुबह लेक्चर सुन रहा था, बोलते हैं महाभारत इज पंचम वेद, इट्स एक्चुअली द फिफ्थ वेद आफ्टर साम वेद, यजुर्वेद के बाद, ये भी एक वेद है। कोई लोग भी बोलते हैं कि महाभारत और पुराण जो हैं ये वैदिक लिटरेचर नहीं है, या ये किसी वोपदेव या कोई दूसरे व्यक्ति ने कंपोज किए हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाश अंदर सरस्वती से मिलते हैं वाराणसी में, तो उसमें बताते हैं कि ये जो वेद हैं वो भगवान के वचन हैं और व्यासदेव ने लिखे हैं, और व्यासदेव बहुत इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से पेश करना है। एक्सपर्ट प्रीचर वो होता है कि जो सत्य को उस तरीके से प्रस्तुत करता है कि सुनने वाले व्यक्ति समझ सके। जैसे यहाँ पर IVF में डिवोटीज ने किताब निकाली माइंड कंट्रोल, यानी डिवोटीज का माइंड कंट्रोल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, माइंड कंट्रोल ये टॉपिक का अर्थ कई हो सकता है, इसका मतलब हिप्नोटिज्म भी हो सकता है, नहीं माइंड कंट्रोल, लेकिन ये टॉपिक पॉपुलर है, वो सुनने में आकर्षक है, उसको देख के लोग पढ़ना शुरू करेंगे, फिर क्या सीखेंगे अल्टीमेटली, मन मना भव मद भक्त। अल्टीमेटली माइंड कंट्रोल मीन्स चैंटिंग हरे कृष्ण, सम और अदर वी हैव टू इंड्यूस देम, बट इस तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे वेदव्यास ने भी सोचा कि अभी लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं, पहले तो श्रुतिधर नहीं है, इसलिए उसको स्मृति, उसको शास्त्र को लिखित रूप में पेश करना, तो वही जो शास्त्र जो पहले सुनने से ही कंठस्थ हो जाते थे, अब उसको इस रूप में पेश किया जा रहा है कि लिखित रूप में, इन अ रिटन फॉर्म, पहले ग्रंथों की जरूरत नहीं होती थी। और महाभारत की स्टोरीज इतने इंटरेस्टिंग हैं, कई बार हम बच्चों के लिए भी इस तरह किताबें लिखी जाती है, पंचरत्न टेल्स जैसे, कोई लेसन सिखाना है बच्चे को तो स्टोरीज के द्वारा, हितोपदेश जैसे है, हितोपदेश स्टोरीज है, तो स्टोरीज से जब कोई चीज़ को इलस्ट्रेट किया जाता है तो वो अच्छी तरह से रजिस्टर होता है दिमाग में, याद रहता है। अब यहाँ तक हमारे बड़े बड़े आचार्य, प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इतने पावरफुल आचार्य हैं, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, फोटोग्राफिक मेमोरी, लेकिन वो अपने आप को भी जानते हैं और जानते हैं कि लोगों का भी क्या लेवल है, तो इसलिए वो कहानी के रूप में, छोटी छोटी कहानी के रूप में उपदेश देते हैं, जैसे उपदेश उपाख्यान, या आप लोगों ने सुना है किताब के बारे में, उपदेश उपाख्यान, शॉर्ट स्टोरीज, कैसे मायावादी लोग कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, उनको अर्थ मालूम नहीं होता। वो फेमस स्टोरी है कि एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है बिना कारण के, उसको जेल में ले जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने मर्डर किया होता है और उसको जेल में ले जाते हैं, तो जज जो कि ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता है, समय ब्रिटिश गवर्नमेंट होती, वो पूछता है कि आपने मर्डर किया, तो इसने मर्डर नहीं किया होता, लेकिन सोचता है मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा, उसको थोड़े से शब्द आते हैं, उसको पहला शब्द याद आता है, यस मैंने मर्डर किया, उसको ये नहीं बोलता है, यस मैंने मर्डर, यस, आपके साथ और भी कोई था? नो, आपको मृत्युदंड मिलेगा, वेरी गुड। तब ये सुनने में लगता है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं जोक्स में, वाई इज वेस्टिंग टाइम ऑन दिस स्मॉल लिटिल जोक्स, क्योंकि उसके द्वारा वो पॉइंट इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि बिना अर्थ जाने लोग आध्यात्मिक सत्य का प्रचार करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मन बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये वैदिक एफोरिज्म है। कल मैं कोथरूड में चैतन्य चरितामृत क्लास ले रहा था, तो उसमें प्रभुपाद बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज़ वेदांत सूत्र, टेक्निकल एनालिसिस। आदि लीला के सातवें अध्याय में दिया गया, जहाँ पे बताया गया कि वेदांत सूत्र क्या है, क्योंकि जो प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप होता है, तो प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को बड़े आदर से अंदर ले आते हैं, और धीरे धीरे भगवान की सेवा करने के कारण उनका मन प्रभावित होता है, और जब वो सुनने के काबिल बनते हैं तब चैतन्य महाप्रभु बोलने लगते हैं, पहले वो नहीं बोलते। महाप्रभु बोलने लगते हैं कि वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र मतलब फॉर्मूला के रूप में पेश किया जाता है। एक्चुअली व्यासदेव ने जो वेदांत सूत्र लिखे हैं वो भक्ति तत्व का निरूपण करते हैं। मुझे भी आश्चर्य हुआ, मैंने पहले कल बार पढ़ा कि वेदांत सूत्र में चार अध्याय हैं, जो पहले दो अध्याय हैं वो संबंध तत्व बताते हैं, और तीसरा अध्याय अभिधेय तत्व बताता है, और चौथा अध्याय प्रयोजन तत्व बताते हैं। आई वॉज शॉक्ड, मैं सोच रहा था कि वेदांत सूत्र यानी मायावादियों के लिए है, यू नो डिवोटीज शुड नॉट टच इट, बट एक्चुअली वेदांत सूत्र इज टॉकिंग अबाउट भक्ति, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो वो उस रूप में पेश किया गया उस ऑडियंस के लिए, लेकिन पहले से ही वो जानते थे व्यासदेव कि लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने उन्हीं सूत्रों को श्रीमद् भागवत के रूप में एक्सप्लेन किया। जब कोई लेखक अपने स्वयं के पुस्तक के ऊपर टीका लिखता है, उससे बढ़कर अच्छा टीकाकार नहीं हो सकता। जैसे मैंने कोई पत्र लिखा है और उसमें कोई वाक्य स्पष्ट नहीं है, तो बेस्ट व्यक्ति इसको समझाने का मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है। तो इसीलिए वेदांत सूत्र के रचयिता श्री व्यासदेव हैं, और वही व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत लिखा है, जिससे कि लोग उसके अर्थ को समझ सकें। कभी कोई एक ही ऑथर के टीचिंग्स में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। अगर भगवान निर्विशेष होते, जैसे कि लोग सोचते हैं वेदांत सूत्र से तत्वमसी, अगर वही ब्रह्म होता तो फिर भागवतम में वही लेखक भगवान के साकार रूप का वर्णन नहीं करते। हम पढ़ते हैं द्वितीय स्कंद में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है, प्रथम स्कंद में भी आता है, और उसके बाद फिर तीसरे स्कंद में भगवान कपिल की शिक्षाओं में आता है कैसे भगवान पर मेडिटेट करना चाहिए। तो अगर व्यासदेव का मत ये होता कि भगवान निर्विशेष हैं या मैं और आप सब भगवान हैं, तो फिर वो श्रीमद् भागवत में भगवान का वर्णन नहीं करते इस प्रकार से। तो सब चीज़ों को समझना चाहिए, तत्वतः समझना चाहिए। उसके लिए बेस्ट है कि सूत्रों को जो है एज इट इज़ स्वीकार करना, इंटरप्रिटेशन नहीं करना। यही चैतन्य महाप्रभु का मेन आर्ग्यूमेंट था प्रकाशानंद सरस्वती के विरुद्ध, कि आप जो बता रहे हैं वेदांत सूत्र स्पष्ट हैं। जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु पहुँचे, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर में ले गए, और जब सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे बोलने लगे, आपने संन्यास ले लिया, आपकी उम्र 24 वर्ष है, आपको इतनी छोटी उम्र में संन्यास नहीं लेना चाहिए, माया बहुत पावरफुल है, भगवान को बता रहे हैं, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत, यू हैव टेकन संन्यास एट वेरी यंग एज, एनी वे आई विल फोर्टिफाई यू, मैं आपको शक्ति प्रदान करूँगा आपको वेदांत तो उपदेश करके। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कोई महाप्रभु सुनने बैठ गए, ये सो हम्बल। देखो, अगर कोई व्यक्ति को दूसरे को अभिमान है और हम भी अभिमानी होते हैं तो प्रॉब्लम हल नहीं होता, अगर कोई एक झुक जाए तो समस्या हल हो जाती है। इन प्रकाशानंद सरस्वती से बात करते समय महाप्रभु इसलिए बाहर जाकर बैठे पहले, जहाँ पर पैर धोए जाते हैं, और उनको ऊपर लेकर आए, फिर बिठाया उनको। तो 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने उपदेश किया और महाप्रभु ध्यान से सुन रहे थे। आप में से कई लोग जगन्नाथपुरी गए थे, आपने देखा होगा सर्वम भट्टाचार्यस ओल्ड डेलिपिटेटेड होम, टूटा हुआ घर है उनका. ही हैड अ टनल, उनका टनल था घर से डायरेक्ट जगन्नाथ मंदिर. अभी भी इसका कुछ भाग है बोलते, लेकिन ट्राई मत करना है तो अंदर फंस जाए. सर्वम भट्टाचार्य उपदेश करने के बाद बोले कि बुझीता कि ना बुझीता, आप 7 दिन से सुन रहे हो, कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहे, कोई समझ में आ रहा है कि सब बाउंसर जा रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? तो चेतना पुरुष सेड, व्हाट एवर, जो भी आप बोल रहे हैं, वेदांत सूत्र इज वेरी क्लियर, बट योर एक्सप्लेनेशंस आर लाइक क्लाउड. आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो बादल की तरह है, वो ढक रहे हैं. तो सर्वम भट्टाचार्य को बहुत थोड़ा इंसल्ट लगा है. जैसे आप क्लास के बाद बोले, प्रभु जी प्रभुपाद का पर्पट बहुत अच्छा था और आपकी क्लास बादल की तरह थी. मैं कहूँगा ठीक है, कल आप ही देना क्लास. इट्स वेरी, इट्स एन इंसल्ट एक्चुअली इन वन सेंस. बट महाप्रभु ने फिर बहुत सुंदर रूप से सिखाया. 2-3 दिन पहले शायद हुआ ना, आत्माराम वर्स डिस्कस्ड, आत्माराम वर्स को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से. तो ये जानना चाहिए कि हालांकि हम जनरली वेदांत सूत्र को टच नहीं करते, लेकिन वैष्णव के अंदर एबिलिटी है. बलदेव विद्याभूषण ने लिखा था ना गोविंद भाष्य, इट वॉज गोविंद भाष्य, वो जयपुर के पास स्थान है वहाँ पर. क्योंकि ये जो गौड़ीय वैष्णव को चैलेंज किया जा रहा था कि आपको गोविंद देव की पूजा करने का अधिकार नहीं है, ड्यूटीज का आपने कोई, आपका जो संप्रदाय है वो बोनाफाइड नहीं है. अगर आपका संप्रदाय बोनाफाइड होता तो उसको वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखनी चाहिए थी. हम स्वीकार नहीं करते गौड़ीय परंपरा को, चैलेंज किया था उन्होंने. और डिवोटीज जानते थे हम क्यों टीका लिखें, जब श्रीमद् भागवत है, जब ऑथर ने टीका लिखी है तो क्यों अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना है ना, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जब चैलेंज किया गया तब भक्तों ने निश्चय किया ठीक है हम जाएंगे. बलदेव विद्याभूषण को भेजा गया और उन्होंने भगवान गोविंद गोविंद देव के दर्शन करते हुए पूरा भाष्य लिखा. उन्होंने भगवान गोविंद देव ने बताते हैं, गोविंद पर्सनली स्पोक, लॉर्ड गोविंद स्पोक, इट्स कॉल्ड गोविंद भाष्य. और जब वो उन्होंने प्रेजेंट किया तो सबने स्वीकार किया. तो वैष्णव बिना कारण से बुद्धि समय बर्बाद नहीं करते, लेकिन आवश्यक हो तो आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि वेदांत सूत्र वास्तव में सत्य है. लेकिन अधिकांश लोग वेदांत सूत्र जैसी भाषा नहीं समझ सकते, इसलिए महाभारत जैसे ग्रंथ भी बहुत यूजफुल है. इन प्रीचिंग में भी स्टोरीज के रूप में अगर प्रस्तुत करें, अब तथ्य देखिए, महाभारत की लड़ाई से पहले का दृश्य देखिए कि कौरव और पांडव दोनों युद्ध की योजना बना रहे हैं और दोनों मिलने के लिए आए. जब आपको शायद पता होगा भगवान कृष्ण लेटे हुए थे या सोए हुए थे, आंखें बंद थी, दुर्योधन पहले पहुंचे. चाहे कितना भी दुष्ट था दुर्योधन, उसको मालूम था कहाँ से हेल्प लेना है. वो कृष्ण के पास आए हेल्प लेने, लेकिन वो सिर के पास बैठे थे और अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठे. जब भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें खोली तब उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और फिर दुर्योधन को. उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तब दोनों ने मदद मांगी. अब भगवान कृष्ण बोले कि ठीक है, मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो अर्जुन को मैं पूछूंगा क्या चाहिए. एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, एक अक्षौणी है ना, एक अक्षौणी, वन अक्षौणी राइट, नारायणी हाँ, या 10,000 एलिफेंट्स, 10,000 हॉर्सेस एंड अदर साइज. दूसरी तरफ आई विल बी अलोन, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊँगा. तो अर्जुन ने यही चयन किया कि मुझे कृष्ण ही चाहिए, आप चाहे हाथ में अस्त्र मत उठाओ, कोई बात नहीं, मुझे आप ही चाहिए. और दुर्योधन मन में सोच रहा था, अरे बोल, वेरी गुड, आई गॉट व्हाट आई वांटेड, ही वाज वेरी हैप्पी. सो दिस इज अ स्मॉल इंसिडेंट, व्हाट इट शोज दैट अर्जुन न्यू द पावर ऑफ कृष्ण. अर्जुन जानते थे कृष्ण कौन है. महाभारत के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण जब धरती पे थे, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल न्यू दैट ही वॉज द सुप्रीम लॉर्ड. बहुत गिने चुने लोगों को पता था. जैसे उदाहरण दिया गया किसका, वो समुद्र का ना, मछली समुद्र से प्रकट होती है, तो समुद्र में रहती है, और चंद्रमा भी समुद्र से आए, तो मछली सोचती है चंद्रमा भी मेरी तरह ही एक छोटे जीव है. ऐसे एक यदुवंशी सोचते कई बार कि कृष्ण भी हमारी तरह ही हैं। यदुवंशी भी सब नहीं जानते थे कृष्ण को, बिकॉज भगवान की इच्छा से ही था सब कुछ। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे सब सेना नहीं चाहिए। से हमारे भी कार्य में हम अपने आप को देखें तो हम बहुत तुच्छ हैं। हमारी जो मटेरियल पावर है इस्कॉन सोसाइटी के, दुनिया की तुलना में बहुत कम है। अभी हमें एक मंदिर बनाना है और उसके लिए शायद कितने 15 करोड़ रुपीस चाहिए। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको, एटलीस्ट 3-4 साल लगेंगे फंड रेजिंग में, नहीं 5 ईयर प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन का। आप कंपेयर करें तो अभी कोई कोई गवर्नमेंट के पास कितने पैसे होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली सुना कि 2008 साल में एक बड़ा उत्सव मना रहे हैं सिखों का नांदेड़ में, यू नो सेलिब्रेटिंग द 300 ईयर्स ऑफ द सिख रिलीजन, एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 480 करोड़ फॉर दैट, ग्रांट दिए 480 करोड़, यू नो। तो 480 रस्ते में 20 यहाँ रख के जाएँ तो हमारा काम हो जाए, यू नो। इट्स जस्ट 480 और 460, वन डिजिट नॉट सो मच। सो एक्चुअली एंड फॉर द गवर्नमेंट 480 करोड़ इज नॉट गिविंग एवरीथिंग, कुछ छोटा सा। और हमारे 20 करोड़ भी हमें स्ट्रगल लग रहा है, यू नो, इट्स अ स्ट्रगल। तो ड्यूटीज कृष्ण मटीरियली देखें तो हम उतने पावरफुल नहीं हैं, यू नो, गवर्नमेंट के फंड्स के कंपेरिजन में। एक दिन का जो खर्चा होता होगा US, समझो डिफेंस का, दैट मस्ट बी आई डोंट नो हाउ मच, बट मे बी 200 करोड़ और 2000 करोड़, नहीं। अभी मैं नगर में गया था और वहाँ पे एक इलाका, एक फील्ड देख रहा था, तो मुझे बता रहे थे रेगुलरली पूना से लोग गाँव से प्लेन्स आते हैं और बस घूम के एक जगह है वहाँ पे ट्रायल के बेस पे बॉम्ब फेंक के जाते हैं, और एक एक जर्नी का 2-3 लाख रुपये खर्च हो जाते, और रोज़ ऐसे 10-15 लोग घूम के बॉम्ब फेंक के चले जाते हैं, जस्ट ट्रायल, जस्ट सो दैट दे आर, इट्स ए एम्प्टी एरिया, मतलब ऑब्वियसली नोबडी इज स्टेइंग देयर, नोबडी विल बी एबल टू स्टे देयर, बट जस्ट प्रैक्टिस राउंड्स, यू नो, लाइक जैसे हम, यू नो, सम पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल और समथिंग एंड लैक्स रुपीज, दैट इज जस्ट पीपल गोइंग फ्रॉम पूना टू नगर। नाउ हाउ मेनी सच बेस, कितने सारे ऐसे मिलिट्री बेसिस होंगे। तो एक्चुअली रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें तो इस्कॉन एक प्योर ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण की जो सब शक्तियों के स्रोत हैं उसकी हम भक्ति कर रहे हैं, और भगवान ने हमें बहुत कम शक्ति दी है, यू नो। आइडियली सबसे ज़्यादा पावर यहाँ होना चाहिए, नहीं, मे बी 10,000 करोड़ वगैरह, और हम दूसरों को दे सकते हैं ऐसे आइडियली। बट कृष्ण वॉन्ट्स हिज डिवोटीज टू बी हम्बल, डिवोटीज को कृष्ण थोड़ा नम्र रखना चाहते हैं, और कृष्ण दिखा रहे हैं कि आपका डिपेंडेंस मटेरियल रिसोर्सेज पे नहीं है, आपका डिपेंडेंस मेरे ऊपर होना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद को अगर अमेरिका जाना है, शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, रेसिडेंट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो एक चार्टर्ड प्लेन आना चाहिए, नहीं एयर इंडिया ओनली फॉर प्रभुपाद एंड 2 सर्वेंट्स, यू नो, और पूरा खाली होना चाहिए, आराम से, यू नो, लेट के जा सके प्रभुपाद। अब प्रभुपाद को एक किसी एक माताजी के पास जाके हरी बोल टिकट दो, और नहीं नहीं आप मर जाओगे ऐसे कोई बोले, कितना बुरा लगता है, नहीं। मैं प्रीचिंग के लिए जा रहा हूँ और कुछ पैसे मांगूँ और कोई बोले नहीं नहीं आप मत जाओ, आप बूढ़े हो, मर जाओगे, है ना, गुस्सा आ जाएगा। प्रभुपाद वाज सो टॉलरेंट, यस ऑलराइट, प्लीज़ गिव मी अ टिकट। फाइनली ही वेंट ऑन अ स्टीम शिप, नॉट वेरी कम्फर्टेबल। वाई कृष्णा डिड नॉट गिव प्रभुपाद कम्प्लीट फैसिलिटी, यू नो, जस्ट जाते ही वहाँ पे पूरा एक सेंटर हो, साउंड सिस्टम, 4 मृदंग, यू नो, 10-15 करताल, डिवोटीस वगैरह। तो कृष्ण ऐसे क्यों नहीं, कृष्ण इज शोइंग स्ट्रगल, डिवोटीज का स्ट्रगल। महाभारत लड़ाई में भी एक्चुअली कृष्ण चाहते तो सब, एक्चुअली कृष्ण ने ऑलरेडी अर्जुन को दिखाया था विश्वरूप में, सब योद्धा मर चुके थे दोनों तरफ से, राइट, यू सॉ इन द विराट रूप ऑल द वॉरियर्स एंटरिंग द बॉडी ऑफ कृष्ण। लेकिन कृष्ण भक्तों को क्रेडिट देना चाहते थे, श्रेय देना चाहते थे। तो डिवोटी, एक भक्त को हमेशा कृष्ण पे डिपेंडेंस बढ़ाना चाहिए। अभी मंदिर की स्थिति अच्छी है फाइनेंशियली तो भी, और अगर मंदिर की स्थिति खराब भी हो तो भी कृष्ण पे डिपेंडेंस बढ़ाना चाहिए हमेशा, कि हमारा डिपेंडेंस अल्टीमेटली कृष्ण पर ही है, हम फाइनेंशियल सिचुएशन पर नहीं डिपेंडेंट है, जो इकोनॉमिक बाहर स्थिति है या डोनेशंस हैं वो तो भगवान की कृपा से आ रहे हैं, नहीं भी आए तो भी हमारा डिपेंडेंस कृष्ण पे है। अभी हमारा शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद आप ऐसा मत सोचे कि ब्रह्मचारी मतलब हर समय ऐसे 20 वर्ष का शरीर रहेगा, नहीं, एक दिन वृद्धाश्रम भी आएगा, वेलकम ओल्ड एज। तो भी भक्त को डिपेंडेंस कृष्ण पे होना चाहिए कि मेरा बॉडी फेल हो रहा है, अभी मेरा बॉडी डिटोरिएट हो रहा है, लेकिन कृष्ण मेरे साथ हमेशा है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर कृष्ण है और एक डिवोटी है वहाँ पर विजयी है, वहीं पर विजयी है। जैसे हम देखते हैं महाभारत की लड़ाई में अर्जुन जब लड़ रहे थे, उनके साथ मदद के लिए भीम, युधिष्ठिर और बड़े बड़े महारथी भी थे, शल्य भी थे, लेकिन उससे पहले जब अज्ञातवास खत्म हुआ था, यू नो दैट एग्जाइल पीरियड, अज्ञातवास, इनकॉग्निटो, एक साल अज्ञातवास खत्म हुआ था, उस समय अर्जुन भृन्नला के रूप में रह रहे थे, और जब उत्तर को भेजा गया लड़ाई करने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज बोले उनको कि आप भृन्नला को भी साथ में भेजो। आपको मालूम है ना ये कहानी, एवरीबडी नोज दैट स्टोरी। नहीं तो भृन्नला यानी अर्जुन जो डांस टीचर बने हुए थे थोड़े समय के लिए, तो अर्जुन गए उत्तर के साथ सारथी के रूप में, और जब उत्तर ने बड़े बड़े महारथियों को देखा, भीष्म और द्रोणाचार्य और शल्य और कर्ण, वो भागने लगे, एक्चुअली वाज रनिंग लिटरली, भागने लगे, बस वो अर्जुन को बोले बस यू टर्न यू टेक वो एक्चुअली रनिंग अवे। तो अर्जुन बोले ठीक है, आप नहीं लड़ सकते, घबराओ मत, मैं लड़ूंगा। तो उत्तर को आश्चर्य, बोले ये क्या आप लड़ोगे, ये डांस लेसन नहीं है, बिग वॉरियर्स आर देयर। लेकिन बोले नहीं, मैं अर्जुन हूँ, आप अर्जुन हो तो आपके नाम बताओ। 10 नाम बताने लगे, फाल्गुन, पार्थ, धनंजय, सव्यसाचीन, और इसने 10 नाम बताए, और फिर अपने अस्त्र दिखाए। ही टुक आउट दैट, एक वो था ना, व्हाट वाज दैट, शमिक वृक्ष, शमिक वृक्ष के ऊपर सब अस्त्रों को रखा हुआ था, महाभारत में जो लड़ाई में यूज़ करने वाले अस्त्र, क्योंकि सारे अस्त्र लेकर अर्जुन गांडी धनुष लेके बोलता हरि बोल भृन्नला, भीमसेन गदा लेके आते कुक, तो दे हैड टू हाइड देयर वेपन्स। तो वो अस्त्रों को निकाला और फिर जब लड़ने के लिए तैयार हुए, जैसे उन्होंने अपने धनुष पतंचा चढ़ाई, वो आवाज़ जब कौरवों की सभा में, कौरवों के युद्ध क्षेत्र में गई, सब घबरा गए। और दुर्योधन बोला अरे ये तो पांडव पहचाने गए, 13वां साल पूरा नहीं हुआ, अब उनको फिर से 12 साल जाना होगा। लेकिन भीष्म ने कहा दुर्योधन को, ठीक से कैलकुलेट करो, पांडव इतने मूर्ख नहीं है। मैंने कैलकुलेट किया था, एक दिन पहले ही 13वां साल पूरा हो चुका था। और उस युद्ध में अकेले ही अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया। मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि अर्जुन को और भी किसी योद्धा की जरूरत नहीं थी, सब मेन योद्धा वहाँ थे, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण, 4 वर देयर, जो 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 महारथी जो थे, और सबको अर्जुन ने अकेले ही, ऐसे नहीं कि और कोई, खाली एक उनका एक ड्राइवर था, वो भी राजकुमार उत्तर, VRS लिया था उसने बैटल फील्ड, ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम बैटल। और अर्जुन अगर चाहते तो उस समय सबको मार भी सकते थे, अर्जुन कुड हैव किल्ड। तो लेकिन उनको पता था भगवान कृष्ण का क्या प्लान है, इसलिए उन्होंने एक अस्त्र छोड़ा, इसका नाम है सम्मोहन अस्त्र। सम्मोहन अस्त्र जानते हैं, भागवतम क्लास में भी आता है वो सम्मोहन अस्त्र, डिवोटीज दैट्स योर महाभारत इज टेकिंग प्लेस नाउ, यू नो। तो सम्मोहन अस्त्र से सब के सब बेसुध हो गए, एवरीबडी वॉज अनकॉन्शियस। एंड उत्तर टोल्ड, उत्तर बोले हरि बोल, आपको याद है आपकी सिस्टर ने बोला था, उत्तरा ने बोला था कि जाते समय तुम राजकुमार को पराजित करके उनके जो वस्त्र हैं उसके छोटे छोटे पीसेस लेके आना, और वस्त्रों को मैं अपने गुड़िया के लिए उपयोग करूँगी। इट्स ए बिग इंसल्ट, नहीं, फॉर अ किंग टू हिज क्लॉथ्स टू बी टोन. लेकिन सब घायल पड़े हैं तो क्या कर सकते हैं. और वो लेकर आए, और जब लेकर आए और आने से पहले ही अर्जुन ने बताया उत्तर को, बताना मत कि मैं अर्जुन हूँ. तो यहाँ पर जब उत्तर के पिताजी विराट को पता चला कि मेरे पुत्र ने अकेले ही सबको पराजित कर दिया, वो इतने खुश हो गए. हरि बोल. बट इट मस्ट बी रियली ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग यू नो, मेरे पुत्र ने ऐसा किया, उनको विश्वास ही हो रहा, खुशी हो रही थी. और ब्रिनल और कंक, इट वॉज कंक, युधिष्ठिर वॉज कंक, या युधिष्ठिर का नाम कंक था. तो युधिष्ठिर के साथ वो पासा खेल रहे थे, चेस. तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि वो विजय हुए इसका कारण ही है क्योंकि ब्रिनल्ला उनके सारथी थे, इसलिए. हाँ, मेरे पुत्र ने विजय प्राप्त किया, ब्रिनल्ला को उसका श्रेय दे रहे हो, उसका क्रेडिट दे रहे हो. गुस्से में आके उसने जोर से उनके नाक के ऊपर प्रहार किया, जो खून बहने लगा, ब्लड वॉज कमिंग आउट पासा से. इमीडिएटली उसने भीम को बुलाया, बर्तन ले आओ. भीम किचन से बर्तन ले आए. देखिए, युधिष्ठिर महाराज का ये वरदान था, अगर कोई उनके खून को ज़मीन पे गिराता है तो 12 वर्ष तक वहाँ पर अनाज नहीं उगेगा उस देश में. तो ही वॉज सो कम्पैशनेट, ही डिडंट वॉन्ट, उसको अच्छा नहीं लग रहा था. दूसरा जगह बोले ठीक है चलो गिरने दो इनको, इनको फल मिले. नहीं, इट्स लाइक पनिशमेंट. बट युधिष्ठिर टॉलरेट, युधिष्ठिर टॉलरेट. एक्चुअली कृष्ण, ये जो भी महाभारत की कहानी है उससे कृष्ण अपने भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. यहाँ कृष्ण दिखा रहे हैं कि मेरे भक्त कुछ भी रोल खेलने को तैयार हैं और इतने सहनशील भी हैं. और अर्जुन भी, और अपनी तरह से द्रौपदी भी. द्रौपदी को कितने इंसल्ट सहन करने पड़े. यहीं विराट नगरी में एक वो राजा था, क्या नाम था उसका, कीचक है ना, कीचड़ या कीचक कुछ था. मैं कुछ दिन पहले हुबली गया था, हुबली मतलब धारवाड़ साउथ इंडिया कर्नाटक में, और मेरे को डिवोटीज ले गए वो जगह. दैट प्लेस इज स्टिल देयर, इट्स कॉल्ड हंगल, इज 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हुबली. देर इज अ प्लेस वेयर विराट, किंग विराट हैड हिज पैलेस, जहाँ पे वो रहते थे. अभी उधर एक शिवजी का मंदिर है, और मेरे को वहाँ पर ले गए जहाँ पर कीचक को मारा गया था. वो अंडरग्राउंड है जगह, आपको याद है कीचक बहुत लस्टी था, वो द्रौपदी को गलत दृष्टि से देख रहा था और भरी सभा में इंसल्ट कर रहा था. तब द्रौपदी ने रात के समय भीम को बताया कि ये बहुत गड़बड़ व्यक्ति है, इसको थोड़ा अभी ठीक करना होगा. तो भीमसेन बोले ठीक है, आप उनको कल रात को बुलाओ. जब अगले दिन फिर से कीचक उनके पास सबके सामने, सो निर्लज, इतना निर्लज, सबके सामने उनको स्पर्श करने आया, तो द्रौपदी ने बताया कि आपकी सारी इच्छाओं को कल मैं रात्रि को पूरी करेंगे, वो भी नाट्यशाला में. तो ये सुन के कीचक बहुत खुश हो गए, अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे मृत्यु के लिए. उसको पता नहीं था. तो अगले दिन सभा में जब कीचक वहाँ पे गया, तो द्रौपदी इंतज़ार कर रही थी ना, भीम से ने साड़ी पहनी होगी. भीम वॉज रेडी फॉर हिम. और जब कीचक बड़े खुशी के साथ उनसे गले मिलने गए, तो भीम ने बहुत बहुत डिटेल में बताया, महाभारत में बताया, उनको बहुत बुरी तरीके से पीटने लगे. और तब उसको पता चला ये द्रौपदी नहीं है, ये हाथ से कुछ अलग हाथ लग रहा है यहाँ. इमेजिन. और धीरे धीरे भीमसेन ने इतना मारा, इतना मारा, उसके मृत्यु होने के बाद भी उसको मारते गए. ही वॉज डेड, दे वॉज बीटिंग द कॉर्प्स. उसके हाथ को निकाल दिया, उसके पैर को निकाल दिया, और सब जैम कर दिया बॉडी में, मेड इट लाइक अ पंपकिन, ये ना भोपला, लाल भोपला. एनी वे दिस, सो यू नो व्हेन दिस थिंग्स आर प्रेजेंटेड स्टोरीज के साथ होता है तो इंटरेस्टिंग लगता है, और साथ में लेसन भी आ जाता है. लेसन क्या है कि कृष्ण हमेशा डिवोटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. कृष्णा डिवोटीज आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. अगर कृष्णा चाहें तो एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति भी जो उनका भक्त है, वो बड़े से बड़े महारथी को पराजित कर सकता है. तो नेक्स्ट डे जब सब ने देखा कीचक की क्या हालत हुई है, तो सब बहुत गुस्से हुए, द्रौपदी के कारण हुए, सबको शंका हुई. तो जब लेके जा रहे थे कीचक के बॉडी को, तो द्रौपदी को भी लेके गए, आपको भी जलाया जाएगा. और द्रौपदी ने पुकारा, उसके 5 नाम थे, जयंत, और ऐसे 4 नाम थे, निक नेम्स रखे थे. जैसे जैसे किसी को बुलाने के लिए दो नाम होते हैं, तो वो नाम पुकारे, जयंत आओ पुकारो, आओ मदद करो। तो भीमसेन तुरंत किचन से बाहर निकले, वेश बदल के आए और जितने भी लोग गए सबको मारने लगे। स्मशान घाट में और भी ज़्यादा लकड़ी का बिजनेस बढ़ गया ना। कितने लोगों की मृत्यु हो गई। फिर अंत में द्रौपदी को बचा के ले आए। फिर कीचक सॉरी विराट, विराट राजा की पत्नी, उसका नाम था सुदेशना, सुदेशना, सुदेशना ने बोला सैरेंद्री को, सैरेंद्री मीन्स द्रौपदी, कि आप अभी यहाँ से चले जाओ, वी आर वेरी फेयरफुल, यू नो, कोई भी आपको देखेगा तो उसको कीचक का बॉडी याद आएगा, तो सबको डर लगेगा, आप चले जाओ प्लीज़, खुशी से चले जाओ, यहाँ जाना है अब जा, नहीं 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 अभी थोड़े दिन रुक जाओ फिर मैं जाऊँगी। यानी भैया भी एक घटना। तो कहने का मतलब ये कि डिवोटीज कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और वही जब कृष्ण पावर को छीन लेते हैं, जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो जाती है, जब कृष्ण धरती छोड़ के चले जाते हैं, तब अर्जुन को सिर्फ कृष्ण के रानियों को ले जाना होता है द्वारका से, और रास्ते में कुछ बैंडिट्स, कुछ गैंग अटैक करते हैं और अर्जुन पराजित हो जाता है। कृष्ण ने अपनी शक्ति को विड्रॉ कर ली। इसलिए डिवोटीज को पता होता है हर क्षण मैं कृष्ण पर डिपेंडेंट। मैं एक छोटी सी बात बोल के अंत करूँगा, इट्स ऑलरेडी लेट। बब्रुवान नाम का एक व्यक्ति होते हैं, बब्रुवान महाभारत की लड़ाई से पहले उसने निश्चय किया होता है कि जो पार्टी हारने वाली है उसको मैं मदद करूँगा। तो कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो मदद करे, इसलिए लड़ाई से पहले ही उसको भगवान ने बोला कि मुझे एक चीज़ चाहिए। उसने बोला क्या? बोला आपका सिर चाहिए मुझे, काट के दे। एंड ही वॉज रेडी, तो बोला मैं काट लूँगा सिर, लेकिन मेरे को ये वरदान दो कि मेरा कटा हुआ सिर भी महाभारत की लड़ाई देख सके कम से कम। ही वॉन्टेड टू सी द होल बैटल लाइव शो, यू नो, रिकॉर्डेड नहीं। रथ यात्रा ऐसे लाइव देखते हैं, ही वॉन्टेड टू सी लाइव। तो उनकी बॉडी को, उनके सिर को ऊपर लटकाया गया था। तो महाभारत की लड़ाई होने के बाद जब अर्जुन रोज रोज जो है कृष्ण पहले उतरते थे, लेकिन लास्ट में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले आप उतरो, अर्जुन उतर गए। फिर कृष्ण उतरे तो पूरा रथ भस्म हो गया। भगवान कृष्ण ने बताया कि वास्तव में ये भीष्म के तीरों से ये रथ नष्ट हो ही चुका था, बस मैंने अपनी शक्ति से इसको बनाए रखा था। तो हर केस में कृष्ण की ओमनीपोटेंसी शक्ति प्रकट होती है। नहीं तो अगर कृष्ण नहीं है तो पांडव और कौरव में कोई अंतर नहीं है, खाली फर्क है कि पांडव कृष्ण की शरण में है और कौरव कृष्ण की शरण में नहीं है, अदरवाइज सब जीवात्मा एक ही हैं। और बाहुबल से तो कौरवों की शक्ति ज़्यादा थी, भीम दुर्योधन वॉज ज़्यादा एक्सपर्ट थे गदा युद्ध में, गधा था वो, गधा खेलना बहुत अच्छा जानता। बलराम थॉट हिम राइट, बलराम, बलराम ने सिखा दिया। इनफैक्ट प्रभुपाद गेव अ नेम टू वन डिसाइपल कॉल्ड दुर्योधन गुरुदास, यू नो, दुर्योधन गुरु मीन्स बलराम। ऑफकोर्स पता नहीं कोई डिवोटीज मजाक में बोलेंगे दुर्योधन इधर आओ, इट बी एक्चुअली दुर्योधन गुरुदास है ना। ही वॉज इन बॉम्बे इन 77, आई हैड मेट हिम दैट डिवोटी। देन लास्ट में जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई तो भीम और अर्जुन में विवाद हो रहा था। यू हर्ड दिस राइट, भीम और अर्जुन, देयर वाज सम कंट्रोवर्सी। अर्जुन बोल रहे थे मेरे गांडीव धनुष्य की जय हो, देखो मैंने इतने बड़े बड़े महारथी भीष्म और कर्ण को मैंने पराजित किया। मेन पीपल वर भीष्म, द्रोण एंड कर्ण, उसमें से दो को अर्जुन ने मारा, भीष्म को घायल किया और कर्ण को मार दिया। भीम बोला नहीं, मैंने अपनी गदा से 100 गधों को मारा, वन बाय वन ऑल वर किल्ड बाय भीम, और कोई इसको छूता नहीं क्योंकि उनके लिए रखा था टारगेट, है ना, स्पेशली दुशासन को उसके हाथ खींच के मार। तो दोनों में विवाद हुआ और वो कृष्ण भगवान के पास गए। भगवान कृष्ण बोले हम उनसे मिलते हैं जिसने पूरी लड़ाई देखी हो, एरियल व्यू, बिकॉज बब्रुवान का सिर जो ऊपर लटकाया गया था, द बेस्ट व्यू इज़ फ्रॉम द टेरेस, यू नो, एरियल व्यू, सो ही वॉज सींग फ्रॉम द टॉप। तो उनसे पूछा आपको क्या लगता है, तो बोले मैंने लड़ाई में देखा दोनों तरफ सिर्फ कृष्ण ही लड़ रहे थे, इट वॉज जस्ट कृष्ण किलिंग बोथ पार्टीज। तब दोनों का विवाद खत्म हो गया। सो वी हैव टू हैव फेथ दैट कृष्ण इज द डूअर। मैं कल यही सोच रहा था, अगर कोई डिवोटी बहुत अच्छा गा रहा है, अच्छा लेक्चर दे रहा है और मेरे को ईर्ष्या हो रही है, तो मैं भूल रहा हूँ कि कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण इज द वन हु डज एवरीथिंग। अनंदिता प्रभु मुझे बता रहे थे लेसन, बोले देखिए एक्चुअली उन्होंने अपने सुंदर किताब निकाली हारमोनियम के ऊपर, सबने लिया ही होगा, जिन्होंने नहीं लिया वो आप लेके जाइए, पैसे हो तो दीजिए नहीं तो कोई बात नहीं। Already he has made enough money now. He owes something to Kunja Bihari. तो मैंने बोला प्रभु जी आप साइन करके दीजिए. ही गेव मी वन कॉपी. मैंने अनाउंसमेंट किया इसलिए था. तो प्रभु जी को बोला एक कॉपी दो. बोले मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा तो मैं साइन क्यों करूँ. ये तो ऑथर का नाम भी नहीं. इट्स रियली यू नो हम ही वॉन्ट्स टू गिव द बुक विदाउट क्रेडिट. उन्होंने नाम भी नहीं लिखा. तो फिर हम डिस्कस कर रहे थे और इसी बात निकली कि ये कृष्ण ने हारमोनियम डिज़ाइन किया है. कृष्ण ने ये सब ट्यून्स दिए हैं. कृष्ण ने ये छपाया है और सब कुछ यू नो अल्टीमेटली कृष्ण ही बेच रहे हैं और पैसे भी कृष्ण से आ रहे हैं. तो इफ यू जस्ट सी द होल वर्ल्ड इज अ बिग ड्रामा बिकॉज कृष्ण ही सब कर रहे हैं. नो लॉस नो गेन बिकॉज नथिंग इज आउटसाइड ऑफ कृष्ण. दिस होल यूनिवर्स इज इन द बेली ऑफ कृष्ण. नहीं समझो मेरे 10 लाख रुपए कहीं और चले गए यानी बेली के एक भाग से दूसरे भाग चले गए. नथिंग इज गोइंग आउटसाइड ऑफ कृष्ण. पाकिस्तान से इंडिया गए, इंडिया से पाकिस्तान, सब अंदर ही अंदर चल रहे हैं. ये माम पश्यति सर्वत्र है ना. हरे कृष्ण. आप लोग ब्लेसिंग दो. ये सब रियलाइजेशन थियोरेटिकल है. प्रैक्टिकल तब होगा जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा. हमें को आशीर्वाद दो कि मैं हर क्षण गा सकूं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की.